श्रवण ललिता श्री विशाखानितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिता कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिव्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशितारिणे नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल स्वरूपाय सर्वानंद विधायिने ताते कृष्ण भजे हरि गुरे सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण प्रभुपाद लीलावृत पार्ट टू द्वितीय पुस्तक से हम पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम है अमेरिका में प्रचार। इस ग्रंथ को पढ़ने से यह हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी प्रचारक भक्तों को किसी भी प्रकार की कष्ट की सामना करनी पड़ेगी। कहीं मान भी मिल सकता है, कहीं अपमान भी मिल सकता है, और कहीं कुछ भी लोग आपके साथ कर सकते हैं। अर्थात अपमान के साथ साथ हम लोगों ने प्रभुपाद लीलावृत को पढ़ा है और आचार्यों से सुना है। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे तो किसी के घर में कुछ दिन रुके हुए थे। तो प्रभुपाद का यह स्वभाव था कि जिनके साथ रहते थे उनको यह चाहते थे कि जो रस की अनुभूति मैं कर रहा हूं वही रस का अनुभव दूसरा व्यक्ति भी कर सके। तो उन्होंने अपने ढंग से जिसके घर में रहते थे उस व्यक्ति को कुछ कहने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने प्रभुपाद को अपने घर से ही निकाल दिया। तो प्रभुपाद रोड पर आ गए, लेकिन प्रभुपाद ने यह अपने संकुचित हृदय से यह नहीं सोचने का प्रयास किया कि नहीं हम कुछ भगवान के प्रचार करने के जगह पर हम इनकी कुछ चापलूसी करें। प्रभुपाद जी ने हृदय में यह विचार किया कि भगवान जिस स्थिति में हमें रखना चाहते हैं वही हमारे लिए ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जिस फ्रिज के अंदर प्रभुपाद जी कुछ भोग लगाने के लिए चीज रखते थे उसी चीज में अंडे वगैरह भी रखा जाता था, फिर भी प्रभुपाद जी ने प्रचार की दृष्टि से बहुत बर्दाश्त किया अपने जीवन में। हम लोगों को तो केवल प्रभुपाद की बनी बनाई हुई सारी चीजें मिल रही है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना पड़ रहा। इसलिए प्रभुपाद का हम लोग जितना भी गुणगान करें, क्योंकि दो दिन पहले, एक दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस था, जितना भी हम इनके विषय में वर्णन करने का प्रयास करें वो कमी है। एक अस्तव रत्निधि ग्रंथ है, इसके अंदर रूप गोस्वामी ने लिखा है कि अगर जो गुरु के तन गुरु को तज करके अर्थात त्याग करके अगर किसी दूसरे की शरणागति को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से निश्चय नरक निवास। फल टूट्यो जल में गिरी खुजे खोजी मिटी न प्यास, गुरु तज के गोविंद भजे निश्चय नरक निवास। आप सोच सकते हैं कि गुरु के अंदर कौन सी शक्ति होती है, और प्रभुपाद अकेले जो कर गए आज हम सब मिलकर के कुछ नहीं कर पा रहे। आज जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर यही बताया गया है कि कितने विषय भोगियों के संग में प्रभुपाद जी ने अपने व्यक्तित्व को कैसे बरकरार रखे हम समझ सकते हैं। जिनका कुछ भी भगवान के संबंध में ज्ञान नहीं था, लेकिन इसी भौतिकतावादियों के बीच में, इन्हीं विषय विलासियों के बीच में प्रभुपाद जी ने अपना सर्वप्रथम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना शुरू किया। तो आज हम जो प्रभुपाद के लीलावृत को पढ़ने जा रहे हैं, यह सेंट डियागो जुलाई 27, 1975 में प्रभुपाद जी जो किए थे उनके चरित्र को सत्स्वरूप गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि बलबोवा पार्क में एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्रील प्रभुपाद ने तड़के के अंधकार में सेंट डियागो के मार्ग में सेंट डियागो फ्रियो को पार किया। रास्ते में सेंट क्लीमेंट आया जहां भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ठहरे थे। हर लोग यही प्रयास करते हैं कि कोई अगर वर्चस्व व्यक्ति, अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी स्थान पर ठहरा हो, रुका हो या कुछ किया हो तो संसारिक लोगों के लिए वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वहां के लोगों ने प्रभुपाद को कुछ वहां उस जगह पर बताना चाह रहे थे कि यहां राष्ट्रपति ठहरते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का ध्यान उस स्थान के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति कुछ भी आकर्षित नहीं हुआ। प्रभुपाद निक्सन के भंडाफोड़ और त्याग पत्र के संबंध में पढ़ते रहे थे और अपने व्याख्यानों में प्रायः उनकी चर्चा करते थे, क्योंकि उसके विषय में कुछ पता था प्रभुपाद। कभी कभी वे इसे उदाहरण के रूप में सुनाया करते थे कि किस तरह सबसे शक्तिशाली लोग भी चिंता और हानि के घेरे में आ जाते हैं, और कभी कभी यह स्पष्ट करने के लिए कि चारों स्वाभाविक वर्णाश्रमों में लोगों को समुचित प्रशिक्षण देने की कितनी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी का कहने का आशय यह है कि कितना भी वरिष्ठ व्यक्ति हो, कितना भी संसारिकता के दृष्टि से परिपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन उसको आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की अति आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक स्तर के ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे कि हम क्या हैं। इस चीज को जानने के लिए आध्यात्मिक पथ के मार्ग में विकसित व्यक्ति की संगति में हमें जाना पड़ेगा, तब हम इन चीजों को जान पाएंगे। यहाँ प्रभुपाद जी संकेत कर रहे हैं कि चारों आश्रम में स्थित या चारों वर्णों के व्यक्तियों को कृष्ण भावना भावित प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक प्रशिक्षण की हमारे जीवन चरित्र जो है अधूरी रह जाती है। प्रभुपाद जी एक जगह उदाहरण देते हैं कि अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर केवल जीरो जीरो लिख दिया जाए तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस जीरो के पहले अगर एक अंक लगा दिया जाता है तो जीरो का भी वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे ही हम संसारिकता की दृष्टि से कितना भी हम विकसित अपने को माने, लेकिन जब तक हम अध्यात्म पथ से नहीं जुड़ते हैं तब तक इस जीवन का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी कार्य है अपने जीवन शैली को बदलना, अर्थात अध्यात्म पथ को अपने जीवन में उतारना। कृपा जी ने एक जगह लिखा है कि कितना भी परिपूर्णता की अनुभूति की जाए, श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, लेकिन अगर अध्यात्म पथ की स्थिति में अगर हम कुछ नहीं जानने का प्रयास करते हैं तो हमारी जीवन चरित्र अधूरी रह जाती है। क्योंकि जब तक भागवत का उदाहरण बार-बार प्रभुपाद जी कई जगह कोट करते हैं कि जैसे लुहार की धौकनी होती है उसको ऊपर नीचे किया जाता है तो हवा देती है, वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम इस संसार में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और भक्ति पथ में नहीं लगे हुए हैं तो उस लुहार की धौकनी की भांति हम बेकार सांस ले रहे हैं, बेकार हम जी रहे हैं। तो इससे यह झलकता है कि भक्ति के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन अधूरी है। एक भक्त ने बताया कि श्रीमान निक्सन बिना किसी सामाजिक प्रतिष्ठा के अपने देशवासियों की घृणा का पात्र बनकर वहां रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तब तुम लोगों को वहां जाना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए। देखा जाता है कि अक्सर करके जब व्यक्ति संसार में खूब लपेड़ा खा लेता है, अर्थात संसार में जब खूब सताया जाता है तो वह शांति की जगह की खोज में लग जाता है कि कहां हमें शांति मिलेगी। और शांति पथ को ढूंढने का वो प्रयास करता है, क्योंकि प्रभुपाद जी यहां संकेत करते हैं कि जब निक्सन जब अपने देशवासियों से घृणा करता था तो तुम लोगों को अपने शिष्यों को कह रहे कि तुम लोगों को वहां जाना चाहिए, और उसके जो मानसिक असंतुलन थी उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र के वाक्यों के द्वारा ही किसी को शांति की अनुभूति हो सकती है। एक श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में उद्धृत करते हैं कि अगर किसी का मन अगर संतुलन में है तब तो उसे निश्चित कभी न कभी उसे भगवत प्राप्ति की संकेत या स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिसका मन ही संतुलन में नहीं है तो बार बार समझाने के बाद भी वो भटकता रहे। क्योंकि बताया गया अमृत बिंदु सरोवर का, अमृत बिंदु एक शास्त्र है उसके अंदर का श्लोक यह है कि मना है मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्ष है, कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र अपना मन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी अपना मन ही है। जिसका मन संतुलन में हो जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन इसको संतुलन में रखने के लिए, इसको एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मन एक ऐसा मशीन है जो 2400 घंटा वर्किंग करता है फिर भी थकता नहीं, कभी भी इसे थकावट की महसूसी नहीं होती। यहां तक कि सोई हुई स्थिति में भी, सपने में भी कुछ न कुछ करते रहता है। इसलिए इसको ऐसे व्यस्त करना है, इसको ऐसे आदतें डालनी है कि नित्य निरंतर कृष्ण स्मरण करता है, तब हमारा मन संतुलन में हो सकता है। तो बात यह कहते हैं कि क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया है और पश्चाताप कर रहा है, इसलिए परम सत्य के विषय में सुनने में उसकी रुचि हो सकती है। कृपा जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब संसार में दुख की अनुभूति होती है तो वह सुख खोजने का प्रयास करता है, और कोई अनुचित वातावरण मिल जाता है, अच्छा साधु की संगति मिल जाती है तो उसके जीवन चरित्र में बदलाव आ जाता है। यह किसी न किसी की अपना व्यक्तित्व या अपना पर्सनल अनुभव हो सकता है कि हम किसके संग में कैसे आए, हम मिलते जुलते वार्तालाप करते, हम कैसे भक्ति पथ में आ गए, यह अपना अपना अनुभव हो सकता है। प्रभुपाद ने एक ऐसा ही उपागम महात्मा गांधी पर भी आजमाया था। बल्लोवा पार्क में भक्तों ने घास के मैदान में जो दुकानें, रंगीने खेमे और मंच तैयार किए थे उनसे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत जन समूह को संबोधित करना आरंभ ही किया था कि भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाने लगा। प्रभुपाद ने पूछा कि वह क्या कर रहा था, तो एक भक्त ने बताया श्रील प्रभुपाद यह आदमी कह रहा है कि वह प्रति मास एक बार से अधिक स्त्री संभोग कर सकता है। प्रभुपाद माइक्रोफोन में बोले वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक तनावपूर्ण पल के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान जारी रखा, तो जिस तरह यह आदमी यौन संबंध की बात कर रहा है उसी तरह संपूर्ण भौतिक संसार इस जौन संबंध से विमोहित है। वास्तव में अभी भी यह अनुभूति की जा सकती है बाहर के देशों में, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी स्थिति उनके साथ उत्पन्न कर दी कृष्ण भावना भक्ति से जुड़ करके उन लोगों को, कि उनसे आज हमारे भारतीय लोग शिक्षा लेते हैं। कितने लोग कई बार हमसे कहते रहते हैं कि प्रभु जी विदेशों में प्रभुपाद ने प्रचार किया और विदेशी लोगों को ऐसा कृष्ण भक्ति का प्रचार दिया, कृपा किया कि आज वो हमारे भारत देश में आकर के जितने पवित्रता और शुद्धता के साथ वो भक्ति कर रहे हैं वैसी भक्ति तो हम लोग नहीं कर पाते। पर यह बात सच है। आगे प्रभुपाद जी इसी अध्याय के अंदर मतलब पश्चात देश के लोगों की बहुत प्रशंसा प्रभुपाद ने किया है कि जितनी गंभीरता के साथ वे लोग इस स्थिति को कृष्ण भावना भावित को स्वीकार किए उतनी गंभीरता के साथ आज हमारे भारतवासी भी इसको स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद के प्रति जितनी एक निश्चयता उनकी है हमारे भारतवासियों की डिवाइडेड माइंड है उतनी एक निश्चयता नहीं है। कोई भी स्थिति हो लेकिन प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि विदेशी लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन एक ही चीज की कमी है कि उन्हें शांति की खोज करते हैं और उन्हें शांति कहां मिले, उन्हें शांति नहीं कोई दे पाया। इसलिए जब मैं गया तो उनको कुछ ऐसी संगति मिली या ऐसी कृष्ण की कृपा हुई कि जिससे वो अच्छी स्थिति को प्राप्त कर पाए, अपने जीवन में बदलाव ला सके। एक तनावपूर्ण पल के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान जारी रखा तो जिस तरह यह आदमी यौन संबंध से की बात कर रहा है उसी तरह संपूर्ण भौतिक संसार इस संबंध से विमोहित है। भागवत का यह श्लोक है, प्रभुपाद जी का संकेत करने का अर्थ यह है इस संसार को मैथुनाकार कहा गया है भागवत के अंदर। इस जगत को ही मैथुन आधार कहा गया, मैथुन आधार मतलब मैथुन का भंडार। किसी भी प्रकार की हम इंद्रिय तुष्टि के करने के प्रयास में लगते हैं तो वह मैथुन प्रतिक्रिया के अंदर ही उसको ले लिया जाता है। जहां हमारी जितनी आसक्ति है उस इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति उसको उसी प्रक्रिया के अंदर डाला जाता है। अगर हम अपने आंखों को तृप्त करना चाहते हैं अपनी जीवा को तृप्त करना चाहते हैं तो जो इनके वास्तविक विषय हैं उन विषय से हट करके अगर हम तृप्त होने का प्रयास करते हैं तो यह भी मैथुना आगार के अंदर इसको माना जाता है कि हमने ऐसा गरिष्ठ या ऐसा कुछ क्लिष्ट भोजन किया जिसके चलते हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं तो यह भी एक उसी का विषय है। उसके चीख भरे प्रतिवाद को अपने भाषण का एक नया केंद्र बिंदु बनाते हुए श्री प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज के वक्तव्य को उद्धृत किया कि सभी भौतिक पासों का आरंभ यौन संभोग से होता है जो दिव्य आनंद की तुलना में अत्यंत तुच्छ और घृणास्पद है। भागवत के सातवें स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराज ने नृसिंह भगवान से स्तुति करते हुए एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि जिस विषय को इस संसार के लोग बहुत ही उत्कृष्ट मानते हैं वह स्थिति एक खुजली के समान है। प्रहलाद महाराज जो द्वादश महाभागवतों में से एक हैं वो उदाहरण देते हैं कि केवल खुजली खुजलाते समय ही आनंद देता है लेकिन खुजलाने के बाद मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैं क्यों खुजलाया, दर्द की अनुभूति करता है। वही स्थिति इस संसार की भोग की स्थिति है। क्षणिक आनंद होते आनंद की अनुभूति करते हैं लेकिन विषयोपरांत या क्लिष्ट देने वाली है, कष्ट देने वाले। किंतु वास्तविक आनंद इंद्रियातीत है। हम स्थूल इंद्रियों से जो आनंद प्राप्त करते हैं वे अस्थायी है किंतु अस्थायी आनंद दिव्य होता है। देखिए इसी शरीर से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इसी शरीर से हम नारकीय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि कौन से हम कर्म में लिप्त हों जिससे हमारे अंदर पवित्रता आए और भगवान के नजदीक जा पाए। अगर शास्त्रों के आदेश के अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने को बचा लेंगे नारकीय स्थिति से। शास्त्रों से अलग तरीके से हम चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने को नरक में डाल लेंगे, अर्थात नरक में प्रवेश करने लायक कैंडिडेट बन जाएगा। क्योंकि हर जीवन चरित्र को जीने की तरीका भागवत के अंदर, गीता के अंदर बताया गया कि कैसे हम जी सकते हैं और आसानी और सुख के साथ जी सकते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते को बदल देते हैं तो भगवत भक्ति से भटक करके नारकीय स्थिति को उत्पन्न कर लेते हैं। और अस्थाई सुख चाहते हैं तो इन्हीं स्थूल इंद्रियों से भगवान की सेवा करके भगवत परायण बन करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। भक्ति रसावृत के एक श्लोक के अंदर बताया गया है कि अगर इस जीवा से केवल हम प्रसाद और हरिनाम का उच्चारण करते हैं या आस्वादन करते हैं तो हम अपने को कृष्णमय बना सकते हैं, हम कृष्ण के पास अपने को जाने लायक कैंडिडेट बना लेते हैं। नहीं, इसी जीवा को तृप्त करने के लिए इति उति दौड़ते हैं, यहां वहां दौड़ते हैं, भागते हैं, इस लुलुपता को बनाए रखने में हम प्रयास करते हैं, कहां सुंदर टेस्ट मिले, स्वाद मिले, तो अपने आप को फंसा लेते हैं। भागवत के अंदर उदाहरण दिया गया है कि मछली अपने जीवा के कारण मारी जाती है, उसका जान चला जाता है। हरिण सुंदर संगीत को सुनने का प्रयास करता है तो वह मारा जाता है। हाथी किसी नकली हाथी को स्पर्श करने का प्रयास करता है तो गड्ढे में पड़ता है और उसे हाथी फंसाने वाला फंसा लेता है। एक एक इंद्रियों के सुख को अगर हम अच्छे स्थिति में अर्थात उसके तरीके को बदल देते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति करने में आसान हो जाता है। लेकिन इनको अगर हम संसारिकता के प्रति लगा देते हैं तो हमें नारकीय स्थिति, यही हमारी इंद्रियां, यही हमारा शरीर नारकीय स्थिति उत्पन्न कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह आदमी कह रहा था कि वह प्रत्येक मास कम से कम एक बार यौन सुख चाहता है। हाँ, इस बात की अनुमति है, क्षमा कीजिएगा, जो लिखे हैं सत्स्वरूप गोस्वामी मैं वो पाठ करता हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मासिक धर्म के 5 दिन बाद पति पत्नी उपयुक्त संतान पाने के लिए यौन संबंध कर सकते हैं। प्रभुपाद ने वैदिक पारिभाषिक शब्द गर्भाधान संस्कार का प्रयोग किया जिससे वह विवाह की सीमा में यौन संबंध को शुद्ध करने की प्रक्रिया का जिक्र होता है। भक्तों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यौन संबंधों की दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र दक्षिणी कैलिफोर्निया के जन समूह के सामने प्रभुपाद दायित्वपूर्ण विहित यौन संबंध का पक्ष समर्थन कर रहे थे। समानतया ऐसे मामलों पर यदि कभी भी वे अपना विचार प्रकट करते भी थे तो वह गृहस्थों को लिखे गए पत्रों में होता था, किंतु यदि अमेरिका के लोग यौन सुख पर फूले थे तो प्रभुपाद की ओर से इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता थी। वे केवल इस बात पर बल देते थे कि यौन सुख सीमित और दायित्वपूर्ण हो, स्वच्छंद यौन संबंध करने का प्रतिफल दुखदायक है। जो कुछ प्रभुपाद जी के विषय में यहाँ लिखा गया है और प्रभुपाद जी जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि व्यभिचारिकता की स्थिति को प्रभुपाद जी समन्वय करना चाहते थे कि अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करके गृहस्थ जीवन स्वीकार करके हम एक पात्य धर्म का पालन अर्थात दंपत्य जीवन की स्थिति में हम रहते हुए अपने इस जीवन को संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह भी एक भक्ति का अंग है। उनका कहने का उद्देश्य यह था कि व्यभिचारिकता की जो भावना है उनको संकुचित करो, अर्थात उसको उस स्थिति को रोकने का प्रयास करो। इसलिए प्रभुपाद जी इस विचार बिंदु पर उन्होंने इस प्रकार की बातें कहा। इस प्रकार के विषय पर कभी कभी चर्चा प्रभुपाद तब करते थे जब कोई गृहस्थ किसी प्रकार का लेटर अपने जीवन में संबंधी लिखता था, तो प्रभुपाद जी अकेले अकेले उनको कभी समझाते थे कि इस प्रकार की स्थिति में आप अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं। किंतु प्रभुपाद ने कहा यौन संबंध की मनाही नहीं है, किंतु यौन संबंध की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य अनेक पापमय कार्यों में लिप्त हो जाता है। एक महीने में एक बार यौन संबंध किया जा सकता है यदि विहित है, क्योंकि स्त्री को महीने में एक बार अजोकर्म होता है। इसलिए यौन संबंध का उद्देश्य अच्छी संतान प्राप्त करना है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं। यदि यह विधान के अनुसार हो तो संसार नरक नहीं बनेगा, यदि यह अविहित होगा तो संसार नरक हो जाएगा। यौन संबंध की मनाही नहीं है, लेकिन उसे विधान सम्मत रूप से होना चाहिए, जिससे जनसंख्या अच्छी हो और मनुष्य सुख से रह सके। प्रभुपाद के उद्देश्य को शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। विशेषकर वर्तमान समय में यदि आप कृष्ण चेतना युक्त बच्चे पैदा करते हैं तो वह भगवान की बड़ी सेवा होगी, क्योंकि हम कृष्ण चेतना युक्त आबादी चाहते हैं, अन्यथा यह संसार नरक बनने जा रहा है। बड़े बड़े साम्राज्य हो गए हैं, जैसे रोमन, ग्रीक और बाद में मुगल, अंग्रेज साम्राज्य, नेपोलियन, हिटलर, मुसलिनी जैसे लोग हुए हैं। ये सभी शक्तिशाली साम्राज्य और मनुष्य पैदा हुए और समाप्त हो गए, केवल उनके नाम शेष हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपके देश में आया क्योंकि मैंने सुना था कि आपका देश बहुत अच्छा है। आकर मैंने देखा कि वास्तव में आपका देश बहुत अच्छा है, आपके नगर, आपकी इमारतें, आपके लोग भी, क्योंकि मेरे शिष्य अधिकांश में अमेरिकी हैं और वे मेरे आंदोलन को बढ़ाने में बहुत सहायता कर रहे हैं। मैंने अमेरिकी जीवन का अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे बहुत अच्छे दिल वाले हैं, उनमें केवल कृष्ण चेतना की कमी है। इस कमी के कारण आपकी सारी संपन्नता के बावजूद आप दिग्भ्रमित और हताश हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन है या इस संसार के कोई वैभव है तो वह सबसे बड़ा सुखी है, लेकिन भागवत के महात्म में ही बताया गया है कि कोई सुखी नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि एकांतिक जीवनम्। भागवत के महात्म में ही बता दिया गया है कि वही व्यक्ति सुखी है जो मुनि का जीवन, विरक्त का जीवन, साधु का जीवन व्यतीत कर रहा है, वही व्यक्ति सुखी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि एकांतिक जीवनम्। सुखी है तो केवल साधु मुनि जो विरक्ति अर्थात त्याग का जीवन व्यतीत कर रहा है। आज की स्थिति में कितने भोकस फिलॉसफी दिए जा रहे हैं कि भोग से समाधि की ओर, क्या क्या लोग लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं और बहुत से लोग पढ़ते हैं इस प्रकार के पुस्तकों को, जबकि भागवत कहता है कि यह इंद्रिय तृप्ति की भावना उस प्रकार की है कि अग्नि में जितनी ही घी डाली जाए उतनी ही अग्नि बढ़ती है। उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि हम जीवन पर्यंत करना चाहें कि यह हम तुष्ट हो सकें, तो यह कभी पूरी होने वाली नहीं है। और इसी को सुखद स्थिति लोग मानते हैं। जब तक हम भक्ति पथ पर अपने जीवन चरित्र को नहीं ढाल लेते हैं तब तक हमें सुख की अनुभूति लौ मात्र भी अनुभूति नहीं हो पाए। जिन्होंने श्रीमद् भागवत की शुरुआत की, श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं तो उनकी जीवन चरित्र को देखिए। तो इस संसार के संसारिकता के भय से मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते कि हमें संसार की माया पकड़ लेगी, लेकिन स्थिति यह है कि इन स्थितियों को अगर संतुलन में बनाए रखें तो हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, अपने भक्ति अपने भक्ति को हम बचा सकते हैं। रूपा जी यहां संकेत कर रहे हैं कि इंद्रिय तर्पण से कभी सुख की अनुभूति नहीं होती, केवल दुख का ही कारण है। बड़े बड़े मैंने अमेरिकी जीवन का अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे बहुत अच्छे दिल वाले हैं। मैं सुनता हूं कि तीन में से एक क्योंकि मनोरोग का मरीज है, क्योंकि आप दुखी क्यों हैं, आपको दुखी क्यों होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है, पर्याप्त खर्चान जमीन धन बुद्धि, तो आप दुखी क्यों है, इसका कारण जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए। कारण यह है कि कृष्ण चेतना के बिना, भगवत चेतना के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। रूपाजी विदेशी लोगों से कहते हैं कि तीन लोगों में से कोई एक न एक मानसिक बीमारी से ग्रसित है व्यक्ति, जबकि आप लोगों के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है जिसके चलते तीन में से एक मानसिक बीमारी से आप लोग ग्रसित हैं, वह है कृष्ण चेतना का विकास नहीं है, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपका मन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप सोचिए, लोग कहते हैं कि हमारा मन है हमारे बस में नहीं है, तो यही कारण है हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ने का कि हम भक्ति पथ के आचरण को अपने जीवन में नहीं उतार रहे। बाहर की भीड़ अब शांत और एकाग्र चित्त थी। प्रभुपाद लगभग 40 मिनट बोले। कृष्ण भावनामृत दर्शन के सभी पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला और अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं से प्रार्थना के साथ साथ अपना भाषण समाप्त किया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से गंभीरतापूर्वक सहयोग करें और इस प्रकार सुखी बने। लोगों ने उनके भाषण पर तालियां बजाई और भक्तगण पूरे तीसरे पहर आगंतुकों के साथ कीर्तन करते रहे, नाचते रहे और सबको प्रसाद वितरण करते रहे। एक भारतीय आगंतुक प्रभुपाद को बता रहा था कि भारत को अणु हथियार क्यों बनाना चाहिए और सैनिक शक्ति क्यों बढ़ानी चाहिए, किंतु प्रभुपाद उससे असहमत थे। उन्होंने बताया कि इसका कारण विशुद्ध क्षत्रियों का अभाव था, अब साहसी लोग नहीं रह गए हैं, इसलिए अब एक स्त्री देश की प्रभारी बनी हुई है। समाचार पत्रों में भी इस तरह के कई समाचार छप रहे थे कि माया बेच नाम का ईएस एक व्यापारी, जहाजिक व्यापारी था, जो कंबोडिया की 12 मील की सीमा के अंदर जा रहा था, बिना किसी चेतावनी को पकड़ लिया गया था। राष्ट्रपति फोर्ड ने कड़े कदम उठाए थे और संयुक्त राज्य के 9 सैनिक भेज दिए थे। जहाज को छुड़ाने में 15 नौ सैनिक मारे गए थे और 50 घायल हो गए थे, पर संयुक्त राज्य ने कंबोडिया पर बम बरसा की थी। प्रभुपाद ने कहा था कि यह उचित था कि संयुक्त राज्य अपने देश से बाहर गए नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को शक्तिशाली होना चाहिए, किंतु सबसे पहले लोगों को कृष्ण चेतना बनना चाहिए। यदि सचमुच यह कृष्ण चेतना राष्ट्र बन जाए तो यह घोषणा कर सकता है। यदि किसी ने हमारे एक भी नागरिक का बाल बांका किया तो युद्ध होगा। श्री प्रभुपाद जोरदार शब्दों में बोलते रहे। उन्होंने श्रोताओं के सामने एक शक्तिशाली अमेरिका का दृश्य प्रस्तुत किया जो कृष्ण भावनामृत में संसार का नेतृत्व करेगा। इससे लोगों में विशुद्ध देशभक्ति की आशाओं का संचार हुआ, जैसा कि वैदिक संस्कृति के युग में था, जब भगवत चेतना नेताओं द्वारा संसार पर शासन होता था। पहले के राज्यों को अगर देखा जाए तो पहले के जो भी शासक वर्ग थे उनको राजर्षि कहा जाता था, राजर्षि, राजा और ऋषि। लेकिन आज के राजाओं के लिए कौन सी उपाधि और कौन सा शब्द उपयुक्त में लाया जाए, यह विद्वान लोग भी चकित हो जाएंगे कि कौन से शब्द उनके लिए हम उपयुक्त करें, क्योंकि उनके अंदर न देशभक्ति है न लोगों की किसी भी प्रकार की सुरक्षा का ये सुझाव है। अपने आप को ही बचाने में और अपने आप को ही बढ़ाने में लगे हुए, तो इनको अगर लुटेरा भी प्रभुपाद जी तो डाकू शब्द कई जगह उन्होंने कहा है, डाकू से भी बढ़कर के। इसलिए इस प्रकार की भावना से बचने के लिए, अपने कृष्ण चेतना को विकसित करने के लिए व्रत और प्रभुपाद जैसे पवित्र लीलावृत का लीलावृत के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति बनी रहे। मैं भी प्रभुपाद से यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो मेरा मन असंतुलन की स्थिति में है वह संतुलित स्थिति में आए, और वो प्रभुपाद की इस मतलब संप्रदाय के लिए अर्थात इस्कॉन सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सकने में समर्थ हों, और अपने को बचाते हुए हम किसी को इस प्रकार के वाक्य कहने में समर्थ हों कि वो अपने कृष्ण चेतना को विकसित कर सके। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री प्रभुपाद लीलावृत की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर हरि प्रमानंद। उत्तर दिया जाए आपके प्रश्न का कि आप कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, आग और पानी दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। सच बात है, सच्ची स्थिति।